हाल में बड़ी झूमर की रोशनी असामान्य रूप से तेज लग रही थी, जैसे हर कोना इस घटना का गवाह बनना चाहता हो। पुराने सोफों पर दीवारों के सहारे सब अपने अपने अंदाज में खड़े या बैठे थे, लेकिन हवा में एक ही सवाल तैर रहा था। रम्या बीच हॉल में खड़ी थी, सिर झुका हुआ, आंखें सूजी हुई, उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। शकुंतला सामने खड़ी थी, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ। आज अगर मैं अपने कमरे से पानी लेने नहीं निकलती, उनकी आवाज कांप रही थी, तो पता भी नहीं चलता कि मेरी बेटी के कमरे में कोई लड़का, कोई अजनबी घुसा हुआ है। रत्ना देवी ने धीमे से आंखें बंद कर ली। सुषमा देवी ने पल्लू ठीक किया, मगर उनके होठों के कोनों पर एक हल्की सी संतुष्टि तैर गई, जिसे वे छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रही थीं। कौन था वो? विशाल ने गंभीर स्वर में पूछा। शकुंतला ने तेजी से कहा, नाम नहीं जानती मैं, अंधेरे में चेहरा ठीक से दिखा भी नहीं, लेकिन इतना जानती हूं कि वो रम्या के कमरे में था और मेरी बेटी, उनकी आवाज भर्रा गई, उसके गाल पर, वाक्य अधूरा छोड़ दिया गया, पर सब समझ गए। अदिति ने हल्का सा सिर झुकाया, पर आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे किसी पुराने हिसाब का एक पन्ना अपने आप बराबर हो गया हो। सुषमा देवी ने धीमे स्वर में कहा, आजकल की लड़कियां, भरोसा करना ही मुश्किल है। आर्यन ने तुरंत उनकी ओर देखा, दादी बात को इतना मत बढ़ाइए, पहले पूरी बात तो सुन ले। और क्या सुनना बाकी है? शकुंतला लगभग चीख पड़ी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रम्या की सिसकियां अब साफ सुनाई दे रही थीं। उसने एक बार नजर उठाकर चारों ओर देखा, हर चेहरा जैसे उसके खिलाफ खड़ा था। तभी शकुंतला ने तेज कदम बढ़ाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस हवेली के इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं आया? उन्होंने हाथ उठाया, चांटा बस गिरने ही वाला था कि अचानक शानली आगे आ गई और उनका हाथ पकड़ लिया। दीदी, उसकी आवाज सख्त थी, बच्ची है वो। बच्ची? शकुंतला ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, बच्ची ऐसे काम करती है? शामली ने रम्या के सामने खड़े होकर कहा, गलती हुई है तो समझाइए, मारने से क्या होगा? तुम तो कहोगी ही, शकुंतला ने तीखे स्वर में कहा, तुम्हें तो पहले से सब मालूम होगा, शायद तुमने ही शहदी होगी इसे, तुम्हारी ढील का ही नतीजा है ये। यह आरोप सुनकर हॉल में एक पल को सन्नाटा छा गया। शामली की आंखों में चोट साफ दिखी, मैं अपनी ही बच्ची को गलत राह दिखाऊंगी? तो फिर कैसे आया वो लड़का अंदर? शकुंतला ने चुनौती दी। रम्या अचानक बोल पड़ी, किसी की गलती नहीं है, मैंने ही उसे आने दिया। उसकी आवाज टूटी हुई थी मगर साफ। सबकी नजरें फिर उसी पर टिक गईं। क्यों? विशाल का स्वर कठोर था। रम्या ने होंठ भींच लिए, जवाब गले में अटक गया। अदिति ने धीमे से सुषमा देवी की ओर देखा, दोनों के बीच एक मौन संवाद हुआ, जैसे वे इस तूफान को दूर से खड़े होकर देख रही हों। रत्ना देवी ने आखिरकार अपनी छड़ी जमीन पर टिका दी, बस, उनकी आवाज बूढ़ी थी मगर असरदार, शोर से सच नहीं बदलता। सब शांत हो गए। उन्होंने रम्या को पास बुलाया, इधर आ। रम्या कांपते कदमों से उनके पास गई और घुटनों के बल बैठ गई, नानी माफ कर दो। रत्ना देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा, माफी बाद में, पहले ये बता, क्या वो लड़का तुझे धोखा दे रहा है या तो खुद समझ बूझ कर उससे मिली? रम्या ने तुरंत सिर उठाया, नहीं नानी, वो बुरा नहीं है। नाम? रत्ना देवी ने पूछा। रम्या चुप रही, उसे याद आया, शकुंतला ने नाम नहीं सुना था, अगर उसने बता दिया तो? देखो, आर्यन ने बीच में कहा, डराकर कुछ नहीं मिलेगा, अगर वो लड़का गलत इरादे से नहीं आया होता तो भागता क्यों? वो पकड़ा गया, घबरा गया, भागा इसीलिए क्योंकि चोर था, सुषमा देवी ने तंज कसा। आर्यन ने गहरी सांस ली, या इसीलिए कि वो जानता था कि यहां उसकी बात कोई सुनेगा ही नहीं। शकुंतला ने उसे घूरा, तुम उसका पक्ष क्यों ले रहे हो? मैं रम्या का पक्ष ले रहा हूं, आर्यन ने शांत मगर ठोस स्वर में कहा। अदिति को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने धीमे से कहा, आर्यन, हर बात में भावुक होना सही नहीं होता। रम्या की सिसकियां फिर तेज हो गईं, माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, हम बस बात कर रहे थे, रात के सन्नाटे में, कमरे में। शकुंतला का स्वर फिर ऊंचा हुआ, बस 5 मिनट के लिए, रम्या ने कहा, वो मुझे देखने आया था, मेरी वजह से डांट पड़ी थी ना। ये सुनकर शकुंतला एक पल को ठिठकी, तो इतना असर है उस लड़के का तुम पर? रम्या चुप रही, लेकिन उसकी खामोशी ही जवाब थी। शामली ने धीमे स्वर में कहा, दीदी उम्र ऐसी है, रोक टोक से बच्चे और छिपते हैं, खुलकर बात करेंगे तो शायद रास्ता निकले। रास्ता? शकुंतला ने कड़वाहट से कहा, इस घर में ऐसे रिश्तों का कोई रास्ता नहीं है। रत्ना देवी ने गंभीर होकर पूछा, अगर कल वही लड़का सामने आकर हाथ मांगे तो? शकुंतला चौंकी। माँ, मैंने कहा अगर, रत्ना देवी ने दोहराया। तब क्या करोगी, बेटी की खुशी देखोगी या खानदान की नाक? ये सवाल हवा में लटक गया। सुषमा देवी ने तुरंत कहा, माँ आजकल के लड़कों पर भरोसा करना आसान नहीं, पहले पता तो चले वो है कौन। पता चल जाएगा, आर्यन ने कहा, अगर मौका दिया जाए तो। अदिति ने भौहें चढ़ाई, और अगर वो किसी गलत परिवार से हुआ तो? परिवार से इंसान गलत नहीं होता, आर्यन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, इंसान से परिवार बदनाम होता है। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा जम गया। शकुंतला की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, डर भी था। मुझे अपनी बेटी खोने का डर है, उन्होंने धीमे से कहा, मैंने बहुत मुश्किल से इसे संभाला है। रम्या फूट पड़ी, मैं कहीं नहीं जा रही माँ, मैं बस आपसे डरती हूँ, इसीलिए छुपाया। ये सुनते ही शकुंतला जैसे भीतर से टूट गई, उनका उठता हुआ हाथ धीरे धीरे नीचे आ गया। श्यामली ने राहत की सांस ली। रत्ना देवी ने फैसला सुनाया, आज के लिए बात यहीं खत्म, रम्या अपने कमरे में जाएगी, कोई उसे कुछ नहीं कहेगा, कल सुबह शांति से बैठकर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। सुषमा देवी को ये फैसला पसंद नहीं आया, पर वे चुप रहीं। अदिति ने मन ही मन सोचा, देखते हैं सुबह क्या तूफान आता है। आर्यन ने रम्या की तरफ देखा, उसकी आंखों में भरोसा था, जैसे कह रहा हो मैं हूँ। रम्या धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ी, पीछे हॉल में सब खड़े थे मगर कोई कुछ नहीं बोला। झूमर की रोशनी अब भी चमक रही थी, लेकिन माहौल में ठहराव था, ऐसा ठहराव जो तूफान से पहले आता है। और हवेली की दीवारें जो सालों से अनगिनत रात समेटी थी, एक और रहस्य अपने भीतर दर्ज कर चुकी थी।